संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बारह भावनाओं के संदर्भ में धर्म भावना के अंतर्गत मुनि धर्म की चर्चा चल रही है, जिसमें मुनियों के पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्तियों की चर्चा की। यद्यपि तीनों गुप्तियां 28 मूल गुणों में नहीं है, फिर भी उनका बहुत अधिक महत्व है। आप कह सकते हैं कि जब उनका बहुत अधिक महत्व है तो 28 मूल गुणों में उन्हें शामिल करना चाहिए थी, और 28 की कोई संख्या थोड़ी थी, 31 हो जाते क्या फर्क पड़ता था। लेकिन ये 28 तो मूल गुण है। आप मूल गुण का मतलब समझते हैं कि जो अत्यंत आवश्यक है जिन्हें पालना, जे यदि उसके जीवन में नहीं हो तो समझ लो वो मुनि ही नहीं है। जैसे 8 मूल गुण है श्रावक के, यदि वो पालन नहीं करे तो वो श्रावक ही नहीं है। बाकी उत्तर गुण तो हजारों होते हैं श्रावकों के भी और मुनिराजों के भी। वे जो उत्तर गुण हैं वो मुनि अवस्था की क्वालिटी को विकसित करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन एक तो बेस है ना, कि जिसके बिना तो वो पद ही संभव नहीं है। तो जो तीन गुप्तियां हैं वो तो ऐसी अनिवार्य रूप से नहीं है, 28 मूल गुण के रूप में उनकी स्वीकृति नहीं है, लेकिन वो होती हर मुनिराजों के यहां है, हर मुनिराज में पालते हैं। क्यों? मन में मन को बस में रखना इतना आसान है, मनोगुप्ति है ना, कि मन कितना चंचल है कि कहीं भी पहुंच सकता है। ऐसे ही वाणी का है और काया का भी है। काया शरीर कमजोर हो जाए, कोई विकृति हो जाए तो कैसा सोचिए, काया हमारे कंट्रोल में रहने वाली कोई चीज है। एक बहुत जो उच्च कोटि के मुनिराज होते हैं, ये तीन गुप्तियां उनके ही पलती हैं पूरी तरह से, और कुछ न कुछ रूप में तो प्रत्येक मुनिराज ने पालते। निर्दोष आगे होना चाहिए उत्तर गुणों में होती हैं, वैसे यहां नहीं हो सकती है। त्रिगुप्ति के धारी जो मुनिराज होते हैं वो तो अवध ज्ञान मन पर ज्ञान सहद होने वाले मुनिराज होते हैं। राजा सैनिक की जो कहानी आती है, बौद्ध गुरुओं के साथ जो चेलना के साथ ने व्यवहार किया था, उसके बदले में राजा सैनिक जैन साधुओं के साथ व्यवहार करना चाहते थे, और इसलिए वो चेलना क्या करती थी कि राजमहल के ऊपर महल में भवन में बैठी रहती खिड़की में, और कोई मुनिराज राजमहल की तरफ आते हुए दिखाई देते तो वहां से वो तीन उंगलियां बताती थी। ये कहानी सुनी, और उसका अर्थ ये था कि तुम तीन गुप्तियों के धनी हो तो इधर आना, अन्यथा नहीं आना। क्योंकि जो तीन गुप्तियों के धनी होते हैं वो तीन ज्ञान के धारी भी होते हैं। अब अवध ज्ञान के धारी होते हैं, मनपरा ज्ञान के धारी होते हैं, तो सामने के मन में जो छल है अथवा जो वो गड़बड़ करने वाला है धोखाधड़ी, वो उनको ख्याल में आ जाती है। और दूसरी, वो तीन गुप्तियां उनके मन वचन काय कंट्रोल में होते हैं तो फिर क्रोधित नहीं होंगे, मन कंट्रोल में है, वचन में है। यानी इन विपरीत परिस्थितियों में तुम अपने को संभाल सको तो यहां आना। फिर वो बहुत लंबी चौड़ी कहानियां चलती हैं कि एक मुनिराज ने देखी तीन बताए तो वापस चले गए, दूसरे वापस चले गए, तीसरे वापस चले गए। फिर उनसे पूछा कि तुम क्यों वापस आ गए, तो उन्होंने कहा था तीन गुप्ती नहीं थी मेरी, तो तुम्हारी तीन गुप्ती कैसे नहीं थी। तो बहुत कहानी आती है, थोड़ा सा नमूना बताता हूं। एक दफा मैं आहार करने के लिए गया, मैं आहार कर रहा था, बिल्कुल नीचे को निगाह थी, एक महारानी मुझे आहार दे रही थी, राजा रानी दोनों साथ में थे, तो उस रानी के पैर के अंगूठे पर मेरी निगाह पड़ी तो मुझे एकदम ये याद आ गया कि ऐसा अंगूठा तो मेरी पत्नी का भी था, मेरी रानी का भी था। बस इसलिए मैंने समझ लिया कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं। वाणी से तो मैं कुछ नहीं बोला, काया से भी कोई एक्शन नहीं हुआ, क्या सिर्फ मन में भी ये विकल्प नहीं आया कि ये सुंदर है, उसके लक्ष्य से कोई बात नहीं आई। जो अपनी विवाहिता पत्नी थी ग्रस्त अवस्था में, उसी की याद आई। यदि उस पे ही लक्ष्य चला जाता और उससे कोई विकृति खड़ी होती तो फिर वो तीन गुप्ति मुक्ति तो कहां, फिर महावृत अनुवृत भी नहीं रहते। लेकिन मनोगुप्ति के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, ऐसे उन्होंने कहा मेरे पे काय गुप्ति नहीं थी, मेरे वचन गुप्ति नहीं थी। ऐसे गुप्तियों का स्वरूप शैणिक पुराण में महारानी चेलना के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया है। तो मुनिराज तो सच्चे थे, 28 मुरुण के धारी तो थे, तीन गुप्तियों के धनी। ऐसा भी नहीं है कि उसे मन में चाय से खोटे भाव आते रहते हों, लेकिन ऐसे कि जिससे मुनि भूमि का भंग ना हो और फिर भी गुप्ती ना सधे, इसलिए तीन गुप्तियों को 28 मूल गुणों में नहीं रखा, मुनियों के मूल गुणों में नहीं रखा। कोई 28 की मर्यादा तो क्या रखना होती, तो 30 हो जाते, क्या फर्क पड़ना था। तो तीन गुप्तियां यदि नहीं रखी तो उसका कारण है, लेकिन वो इतनी जरूरी भी है उनका होना, इसके लिए 28 मूल गुणों का वर्णन कर रहे हैं पंडित दौलत राम जी षडालान नामक ग्रंथ में। उनने एक पंक्ति इसके लिए खर्च की और लिखा, सम्यक प्रकार निरोध मन बच काय आत्म ध्यावते। ये त्रिगुप्ति है कि भले प्रकार अच्छी तरह से मन वचन काय को रोककर अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। तीन गुप्ती के जो धनी होते हैं वे अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, और उनकी हालत कैसी होती है कि तिन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते। एक उदाहरण है, बिल्कुल ऐसे खड़े पत्थर की मूर्ति हो, ऐसे ध्यान में बैठे हैं, तो हिरण को ये धोखा हो गया कि सचमुच ये आदमी है, कि आदमी के आकार में पत्थर की मूर्ति है। धोखा नहीं हो गया, पक्का निर्णय हो गया कि पत्थर की मूर्ति ही है, और इसलिए उसको खुजली हो रही थी, उसे पत्थर से घिस के वो खुदाते हैं। अपने जैसे खुदाने की सुविधा तो उन्हें है नहीं ना, अपने हाथ से खुदा लेते हैं। अपने भी कई ऐसे स्थान है कि जहां अपना हाथ नहीं पहुंचता है, तो हम दूसरों का सहयोग ले लेते हैं, लेकिन हिरण को ऐसी सुविधा कहां है। इसलिए वो दीवाल से, वृक्ष से, कोई भी चीज से जहां मिले तो अपने शरीर को वहां खुजलाने की कोशिश करते हैं। सवाल हिरणों के खाज खुजाने का नहीं है, ये कोई हिरणों की महिमा नहीं बताई जा रही है, और इस बात का भी नहीं है कि मुनिराजों को हिरण ने खाज खुजाई तो भी मुनिराज ने हिरण को कुछ नहीं कहा। जिनके तीन गुप्तियां नहीं होती और उन मुनिराज के लिए भी हिरण खाज खुजाता और उन्हें पता भी चलता है और उनसे शरीर उनका हिल भी जाता, तो भी वे कोई हिरण को डंडा मारने के लिए दौड़ने वाले नहीं थे। ऐसा तो कोई भी मुनिराज नहीं करता है, तो तीन गुप्ती के धनी होंगे बे ही नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है क्या। तो ये बात शब्द जो कहकर के तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते, कह के कभी कहना क्या चाहते हैं, इसका हमें जरा गहराई से सोचना चाहिए। ये ऊपर ऊपर से सोचने से एक बात नहीं चलेगी। वे उनकी काय गुप्ती की बात बता रहे हैं क्या, तो ऐसा नहीं था समाज में बैठे तो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, होते ना, तो देखो बहुत लोगों को देखे ना, एकदम ऐसे मूर्ति के जैसे बैठ जाना, एक काय गुप्ती वालों की बात है, ये बताना उनका उद्देश्य है कि कम से कम काय गुप्ती का पालन तो इतनी उससे होना चाहिए कि जब ये समय कर रहे हो तो आप लोग मूर्ति से, आपने अभी कहीं लंदन नहीं गए हैं, यदि कभी जाएं और कोई गया हो तो वहां जाके देखना कि वहां का वो जो राजमहल है, तो जो भजनगम पैलेस कहलाता है, उसमें जो वो चौकीदार लोग रहते हैं, सुरक्षा गार्ड, तो ऐसे आमने ऐसे घूमते रहते हैं, उसके सामने चार होते हैं, तो एक उधर से यहाँ आता है, एक उधर से यहाँ जाता है, लेकिन जब वे खड़े हो जाते हैं अपनी जगह और आधा आधे घंटे तक खड़े रहते हैं, तो आप ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि ये जिंदा है कि पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। इसे देखने के लिए हजारों की भीड़ रोजाना वहां खड़ी रहती है, और जब ये चलते हैं ऐसे चलते हैं जैसे कि वो पत्थर की मूर्ति चल रही है एक विशिष्ट स्टाइल में, और खड़े उनका खड़ा होना और उनका चलना, वो दोनों देखने के लिए लोग हजारों लोग लाइन से खड़े रहते हैं। दो दिन का एक शो होता है, समझ लीजिए दो दिन का टूरिस्ट लोग जाते हैं, और उनकी स्टेच्यू बना बना कर कई जगह रखे हुए हैं, अपने हिंदुस्तान में भी कई लोगों के घरों में किवाड़ों पर बड़े जो बड़ा फुट चित्र लगा रहता है ना, ऐसे टोपा मोपा सा लगा काला काला, ऐसे वही है, वही चीज है। ऐसा और भी दिखाते हैं आदमी में, अभी मद्रास के बगीचे में भी कि अपने घूमने जाते हैं शाम को, तो हम गए तो वहां हमने देखा कि वो ऐसे ही आदमी ऐसा खड़ा हो जाता, अपन बिल्कुल उसे समझेंगे कि देखो स्टेच्यू खड़ा है, और अपन 10-20-50 लोग खड़े खड़े देखते रहेंगे, इतने में वो चल देगा, और दूसरी जगह जाके ऐसा खड़ा हो जाएगा जैसे पत्थर दूसरी मुद्रा में ऐसा हो जाएगा, अभी ऐसा खड़ा था तो ऐसा खड़ा हो जाएगा दूसरी मुद्रा में क्या, और वो 10-5 मिनट तक बिल्कुल ऐसा खड़ा रहेगा कि अच्छों अच्छों को शक हो जाएगा। जैसे कोई कलाकार वो बढ़िया माना जाता है ना कि वो मूर्ति बना के खड़ी कर दे, तो लोगों को शक हो जाए कि ये जिंदा आदमी होगा, उसका मतलब कलर और उसकी सब चीजें इस तरह से मेंटेन करे, ऐसे ही जिंदा में स्टेच्यू का शक हो जाए, ये बात बताना चाहते हैं यहाँ। इसके लिए जो उदाहरण दिया है क्या लिखा देखो, कि तिन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुदावते, मेरे गण उसे पत्थर समझ के अपनी खाज खुदाते हैं, जो कोई मुनिराज से अपनी खाज नहीं खुदा रहे हैं, ये चेतन प्राणी से अपनी खाज खुदाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मन ऐसी काय गुप्ती उनकी थी, और ऊपर तो बात कही थी तो सम्यक प्रकार निरोध मन बच काय आत्म ध्यावते। अब यहाँ बहुत मार्मिक बातें विचारने की है कि यदि अपने शरीर को एकदम ऐसा हम स्थिर रखने की कोशिश करें तो आत्मा का ध्यान करेंगे या शरीर का ध्यान रखेंगे, क्योंकि शरीर हिले नहीं बिल्कुल, हम पत्थर की मूर्ति जैसे रखें वो खड़े हैं ना, जैसे लोग मैंने बताया उदाहरण देकर के, उनका ध्यान बिल्कुल एकदम शरीर पर रहता है, हिले नहीं इस बात पर रहता है, ऐसा नहीं, उपयोग जरा हटे तो वे हिल सकते हैं। यहां ये बात कर रहे हैं, वहां आत्मा का ध्यान की बात कर रहे हैं, और सम्यक प्रकार निरोध, भले प्रकार उन्हें मन को रोक दिया, वचन को रोक दिया, काया को रोक दिया, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल जैसा हाथ से पकड़ करके रोक दिया, हिल नहीं सकते तुम क्यों, लेकिन देव मुनि राज तो कुछ कर ही नहीं रहे उसमें मन वचन काय में, अरे करना तो बहुत दूर वेदों से जान तक नहीं रहे, क्योंकि उनके ज्ञान का गेय तो भगवान आत्मा बना है, लब्धि ज्ञान में वो पढ़ा हो तो अलग बात है, उपयोग में तो उनका भगवान आत्मा ही ज्ञान का गेय है, तो शरीर की स्थिति ऐसी कैसे क्यों हो गई क्या पत्थर जैसी, तो जो उत्तम सहन वाले होते हैं उनके ऐसा होता है, जो हमारे तुम्हारे जैसे कमजोर सहन वाले होते हैं उनका यदि शरीर पे ऐसे उपयोग घटे तो शरीर कांपने लग जाए, धूलने लग जाए, अपन खड़े खड़े सामायिक देह में ध्यान करें आत्मा का, और उपयोग आत्मा से हटे तो हम गिर सकते हैं, क्योंकि तो हमारा संग में नशा है। ये दो मुद्राएं होती है ना अपने, कौन कौन सी भगवान की, एक खड़गासन एक पद्मासन। तो खड़गासन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए पद्मासन ही है। बैठ के ही शांति से पद्मासन लगा के ही हमें समाया करनी चाहिए। ये जो खड़े खड़े एकदम जो हमने नमो का मंत्र पढ़ने लगते हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि उस पर से उपयोग हट जाए और खड़े खड़े में वो खड़ा रहे, गिर जाएगा, और गिर जाएगा सिर्फ उठ जाएगा। तो ऐसे संगन वालों की बात है। उन तिन सुथर मुद्रा देख मृगण उपल खाज खुजावते। तो वे तीन गुप्तियां 28 मूल गुणों में, मुनियों के मूल गुणों में शामिल क्यों नहीं की गई, इसके लिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। ऐसे जो महामुनिराज होते हैं मोक्षगामी, अभी वर्णन वहां तक ले जाएंगे ना, वही है अनंत अनंत काल यथा तथा सब प्रणय, तो मोक्ष जाने वाले मुनिराजों की बात हो रही ना, इसलिए वो बात कर रहे हैं और उसका उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मूल गुणों में शामिल नहीं किया। तो मूल गुणों में इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि मूल गुण जो हैं वो तो ऐसी चीज है कि वो हरेक के होना ही चाहिए, उसमें ये छुट्टी नहीं चलेगी कि जमाना खोटा है, पंचम काल है, ये दो मूल गुण तो मेरे से पलते ही नहीं है, एक फला और एक फला, एक फला और एक फला, ये तो मूल गुण है। उत्तर गुणों में ये सब बात हो सकती है। अब इसके बाद में अब वो पांच इंद्रियों के विजय की बात करते हैं। तो अभी कितने मूल गुण हो गए अपनी तरफ से वर्णन करने में? अभी तो सिर्फ दस ही हुए हैं, पांच महावृत और पांच समिति। ये तीन गुप्ती की जो चर्चा आई वो तो उसमें शामिल है नहीं। अब इसके बाद में पांच इंद्रिय जय, पांच इंद्रियों को जीतना। उसके बाद में छह आवश्यक और उसके बाद में सात सात शेष गुण, ऐसे 28 मूल गुण होंगे। अब देखो तो पांच इंद्रिय जय क्या है? कि पांच इंद्रियों के विषयों को छोड़ देना, नहीं भोगना, ये पंच इंद्रिय जय है। वो तो पहले छोड़ ही चुके, पांच इंद्रियों के विषयों का त्याग तो वे कर ही चुके ना। अरे स्त्री का ब्रह्मचर्य लिया ना, ब्रह्मचर्य महाव्रत लिया तो स्त्री सेवन का त्याग कर चुके, स्पर्श इंद्रिय की विषय का त्याग कर चुके। ऐसे हम देखेंगे यदि जाकर के तो पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग तो वे कर ही चुके हैं पूरी तरीके से। यहां पांच इंद्रियों के विषयों के त्याग की बात नहीं है, पांच इंद्रियों के विषयों को जीतने की बात है। ये जीतना क्या है? पांच इंद्रियों के विषयों को जीतना बहुत गहरी बात है कि पांच इंद्रियों के जो भोग हैं उनको तो हमने छोड़ दिया। अब जो भोग की भावना अंदर विद्यमान हो वो यदि नहीं खत्म हुई जैसी होनी चाहिए और भूमिका के योग्य, तो अंदर में विकल्प खड़ा होगा। तो काया से तो कोई ऐसी क्रिया होने वाली है नहीं, क्योंकि सारा जगत सामने खड़ा है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे मन में कितने ही पाप आए लेकिन दूसरे माँ बहन की इज्जत तो हम लूट नहीं सकते, पुलिस पड़ी खड़ी है सामने, गवर्नमेंट खड़ी है, दूसरे की हत्या हम कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन मन में तो भाव आ ही सकता है ना। जब हम जब वो अपनी पत्नी को भी छोड़ चुके हैं, समझ गए ना, सर परिग्रह को छोड़ चुके हैं, तो अब पांच इंद्रियों के विषयों का भोग तो वे करते दिखाई दे ही नहीं सकते। ये पंचेंद्रीय विजय में उसकी बात नहीं है, वो तो महाव्रतों में समिति में आ गई बात, और उसके पहले अलग छुलक भैरे तभी आ गई थी, श्रावक के जीवन में आ गई थी वो बात। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो सातवें प्रतिमा में आ गई थी ना, हजार कुछ। तो अभी क्या कह रहे हैं? ये जो पांच इंद्रियों के विषय संबंधी भोग का भाव अंदर में पैदा हो, क्योंकि हम भोग सकते नहीं, तो उससे जो आकुलता हो उस आकुलता को हम सहें, ये बात यहां नहीं है। वो तो पांच इंद्रिय विषय सह होगा, जय नहीं होगा। ये परिसर जय होता है ना, इसे पंच इंद्रिय विषय का जय जीतने की बात है। पांच इंद्रिय के विषय को जीतने की बात है, सहने की बात नहीं है। गर्मियों में गर्मी लगेगी तो सहेंगे क्या करेंगे, सर्दियों में सर्दी लगेगी तो सहन करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे वो तो उसमें क्या दम है, उसमें तो हम सामान्य ग्रस्तों को भी करनी पड़ती है। तो हम आदमियों में भी ऐसे बेचारे पुण्यहीन लोग हैं, इनके पास दो कपड़े ही नहीं है, मकान नहीं है तन ढकने को, बाहर पड़ा रहना पड़ता है ना। हर सर्दियों में आता है दो चार लोग मर गए सर्दी से, आता क्या नहीं आता। और ये पशु पक्षियों की क्या हालत है। मेरे कहने का मतलब सहते तो सभी हैं, वो सहना धर्म नहीं है। देखो कितनी तकलीफ उठाते हैं, वो तकलीफ उठाना धर्म नहीं है। यदि वो सहते हैं तो धर्म नहीं करते हैं, तो क्या करें, भोग ले लें। किसने कहा वो जय, जय का मतलब है कि वैसे भाव पैदा ही ना हो, उसका नाम जीतना है। जैसे तो त्याग दिए, इसलिए वाणी और क्रिया से तो करने का सवाल ही नहीं रहा। अरे नहीं भी त्यागे हो, जैसे गृहस्थ में है, बिल्कुल सामान्य आदमी है, रक्षा पुरुष जैसे अपन बोलते हैं, गली में चलने वाला आदमी, उसने कुछ भी त्याग नहीं किया है तो भी वो पांच पाप कर सकता है, वो चोरी कर सकता है, वो हत्या कर सकता है, किसी की मां बहन को छेड़ सकता है, ठीक है क्या। तो वो नहीं कर पाना एक, इसमें तो कोई धर्म की बात ही नहीं है। लेकिन उनने अपने बुद्धि पूर्वक छोड़े हैं, हाल में है ना, उसमें कुछ धर्म की बात हो सकती है। लेकिन अंदर में काया से वचन से तो बन गया छोड़ने से, अब मन में आ जाए तो वो फिर वो उसे किसी तरह सह जाए वो तो सह होगा। और वो मन में आए ही नहीं, उसका नाम है पांच इंद्रियों के विषय की जय। अब आप कहोगे फिर मतलब क्या रह गया उसका, तो भोगेगा ही नहीं, मन आएंगे सह का क्या मतलब है, तो हमने त्याग ही दिया तो फिर क्या। भैया पांच इंद्रिय के विषय का अर्थ नहीं समझते नहीं, इसलिए ऐसी बात करते हो, क्या अर्थ नहीं समझते हैं। ये अर्थ नहीं समझते हो कि बहुत से विषय तो हमने छोड़ दिया, हम बुद्धिपूर्वक भोगते हैं। लेकिन जैसे स्पर्श इंद्रिय की बात करें अपन, तो स्त्री सेवन तो छोड़ दिया, लेकिन स्पर्श इंद्रिय के विषय तो आठ है ना, ठंडा गर्म, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम। अब इनका संयोग तो होगा कि नहीं होगा, ठंडी हवा चलेगी ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी गर्म लगेगी, कठोर स्पर्श होगा, भीतरी का मुलायम स्पर्श होगा। ये विषय तो आएंगे तेरे होंगे, ठंडी हवा चलेगी तू उनसे कैसे कैसे त्यागेगा, बोल। मैं ठंडी हवा नहीं खाऊंगा, मैं गर्म हवा नहीं खाऊंगा, ऐसा त्याग करेगा। त्याग में तो स्पर्श महिला का सेवन नहीं करूंगा, ऐसा त्याग हुआ, झगड़ा खत्म। लेकिन विषय स्पर्श इंद्रिय का विषय आठ विषयों को जीतना चाहिए ना, समझे ना। तो वो कैसे जीते आठ विषयों को, तो उसको आठ विषयों को जीतने का मतलब क्या, क्या ठंडी हवा आएगी गर्म हवा आएगी, अब अपने कुड़कुड़ाता रहा मन में और सहे, अब सहना तो पड़ेगा। जब नैना दिगंबर दशा हो गई, क्यों आहार को निकलेगा तो बाहर में ठंडी हवा चलेगी तो सहना ही पड़ेगा, अंदर भी तो लगती ही है ना, क्यों। तो उसका नाम जय, ऐसे आठ इंद्रिय के जो विषय ठंडे गर्म नरम, ये जो आपतित हैं, जिन्हें वो खुद नहीं भोग रहा है लेकिन सामने से आप पड़ रहे हैं, तो उनकी वजह से चित्त में आकुल व्याकुल नहीं हो और कोई फर्क ही नहीं पड़े, उसका नाम है इंद्रिय का जीत। अब ऐसे मैंने इस प्रश्न पर थोड़ा घटाया ना, ऐसी पांच इंद्रियों पर घटा सकते हैं, घटाना चाहिए, अभी आज तो समय नहीं है, इसे कल के व्याख्यान में अपन इस बात को घटाएंगे कि पांच इंद्रियों के विषयों को कैसे जीता जाता है। जैसे पंच इंद्रिय जय जो मुनियों के पांच मूल गुण कहलाते हैं, 28 में से पांच का उनका नंबर है भाई साहब, वो साधारण नहीं समझना, उसमें बहुत गहराई है जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।